इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं सूरत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, हरूफ मुकत्तआत। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनका माना अल्लाह ताला ही जानता है। सूरह यूनुस भी इन्हीं हरूफ के साथ शुरू हुई थी और वहाँ पे इसकी तफसील मैं बता चुकी हूँ। किताब उन किताब है, ओह कीमत, पुख्ता हो गई या पुख्ता की गई बेहतर है, पुख्ता की गई आयात, इसकी आयात। सुम्मा फुस्सिलत, फिर फुस्सिलत, जैसे आप तफसील कहते हैं उर्दू में बोलते हैं, तो तफसील करके बयान की गई, खोल खोल के बयान की गई, किसकी तरफ से, मिल्लादुन, उस की तरफ से, उसके पास से, जो हकीम है और खबीर। अब देखें, ये सूरत भी हरूफ मुकत्तआत से शुरू हो रही है, और जब भी हरूफ मुकत्तआत से कोई सूरत शुरू होती है, आप देखें अक्सर उसके बाद कुरान पाक के मुतल्लिक बात की जाती है। यहाँ पे भी कुरान की आयात के बारे में बात की गई कि वो मोहकम है और मुफस्सल है, दो इसकी शान बयान की गई आयात की, कि कैसी आयात है कुरान में, ये ऐसा कलाम है जिसकी आयात मोहकम भी है, मोहकम हाकाफ मीम से, अहकाम भी इसी से है, यानी मजबूत, जामे, पक्की, कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, मोहकम है और उनमें तफसील भी है। तो यानी यहां पर मोहकम और मुफस्सिल दो दो अल्फाज को का समझने तकाबुल किया गया, इनका कंपैरिजन है या इनके साथ इसको बयान किया गया। वैसे तो मोहकम का माना मैंने बताया कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और हर वो चीज जो आसानी से समझ आ जाए वो भी मोहकम होती है, इसका माना समझ आ जाए। लेकिन जब ये मुफस्सिल के मुकाबले में लाया गया ना ये लफ्ज, तो इसका माना क्या हुआ कि कुरान की आयात जो हैं वो मोहकम है, यानी उनके अंदर जामियत है, वो कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़े से अल्फाज के अंदर बहुत बड़ी बात कर दी गई, और मुफस्सल भी है, तफसील भी है, तो अल्फाज के लिहाज से जामे है और माने के लिहाज से तफसील है। आप देखिए ना, एक एक लफ्ज है, एक लफ्ज होता है या एक आयत होती है। अब देखिए मैं उसकी कितनी लंबी तफसीर करती रहती हूँ, फिर भी इसका हक नहीं अदा हो पाता, इसके माने, इसकी डेप्थ इतनी है। जैसे हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कुरान के अजाइब कभी मुकम्मल नहीं हो सकते, और ना ही ये कभी पढ़ पढ़ के पुराना हो सकता। यानी आप हमेशा जब भी इसको पढ़ेंगे ना, तो इसमें कोई एक नया पन्ना पाएंगे, माने की एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी। तो इस एतबार से कुरान पाक जो है वो मोहकम है, इसके लफ्ज मोहकम है और उसके माने में बड़ी तफसील है। तो मुख्तसिर भी है और तफसील भी है, और एक तो इसका ये माना मैंने बता दिया, दूसरा इसका माना ये है कि कुरान की बाज आयात मोहकम है और बाज मुफस्सल है। जैसे आप देखें सूरतें भी, शुरू की जो सूरतें हैं वो क्या है, मोहकम है, और जो बाद में मदीना में नाजिल हुई, सुम्मा आ गया ना, सुम्मा तराखी के लिए आता है, यानी वक्त बाद के, इसके बाद ये हुआ, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं इसके बाद ये, यानी पहले मोहकम थी फिर उसके बाद मुफस्सल हो गई। तो उसके बाद आप देखें कि फिर सूरह बकरा, सूरह निसा, आले इमरान कितनी लंबी लंबी है, इसके मुकाबले में आप मक्की सूरतें, 30वें पारे में मक्की सूरतें हैं सारी, वो कितनी मुख्तसिर सी हैं। तो पहले मोहकम थी और यानी मुख्तसिर, और उसके बाद मुफस्सल हो गई, और ये भी माना कि इसकी आयात मोहकम है यानी मुख्तसिर है, लेकिन माने के लिहाज से समंदर है उनमें। तो और ये किसकी तरफ से है, जो सब कुछ की खबर रखता है और जिसकी पास हिकमत है, यानी सबकी खबर उसको है और हिकमतें भी उसके पास हैं, ऐसी जात का ये कलाम है। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अब ये बात है जो क्रक्स है सारे कुरान का, खुलासा इस एक बात में है। सारी जितनी भी तफसीलात हैं वो इस एक बात में, इस एक पॉइंट पे हैं, और वो क्या है कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की, यानी तौहीद। तौहीद के ऊपर इसके अंदर बात है कि सारा कुरान आपको जैसे पहले भी बताया था कि तौहीद की तरफ लेकर आता है। तौहीद इसका जो एक वर्ड में इसकी समरी की जाए तो तौहीद। तो यानी इंसान का जो मकसद हयात है वो ही ये है कि वो अल्लाह की इबादत करे, इसकी जिंदगी का मकसद है ये। और इसके लिए अल्लाह ताला ने ये कुरान उतारा कि तुम ना इबादत करो मगर सिर्फ अल्लाह की, कि इबादत के लायक तुम्हारी सजदों की, तुम्हारी नमाजों की, तुम्हारी दुआओं की, तुम्हारी उम्मीदों की, तुम्हारे तवक्कल की हकदार सिर्फ वो एक जात है, उसके सिवा कोई भी नहीं। लिहाजा सब की नफी पहले करो, नो से, नो टू एवरीथिंग एंड एवरीबडी, जिसको भी दुनिया में पूजा जाता है, जिसको भी खुदा बनाया गया है, सबसे पहले उन सब की नफी, कोई राजिक नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई कोई भी मेरा नफा नुकसान करने वाला नहीं, कोई भी मेरा रोजी रसा नहीं, कोई भी मुझे शिफा देने वाला नहीं, कोई और भी मेरी बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई और भी मेरा मुश्किल कुशा नहीं, सब पे पहले नहीं 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 करेंगे तो फिर आता है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और अगर ये कहना अल्लाह तो देता है लेकिन ये भी जो है ना अल्लाह के हाँ बड़े वो हैं, ये भी कुछ करते हैं हमारा, इनके पास भी मेरा कोई फायदा पड़ा हुआ, तो फिर तौहीद खालिस नहीं है आपकी। जब तक सबकी नफी ना करते, किसी मिजार वाला, कोई कब्र वाला, कोई जिन्नों वाला, कोई जादुओं वाला, कोई तावीज गंडे बांधने वाला, कोई भी और असर व रसूख रखने वाला, कोई भी मेरा कुछ नफा नुकसान नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही है जो कि मेरा मददगार है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना हो। क्या इसके अंदर हम ये समझते हैं कि हम इंसानों से मदद नहीं मांग सकते? नहीं, इंसानों से आप मदद मांग सकते हैं। आप अपने बेटे को कहते हैं पानी लेकर आओ, तो ये भी तो मदद मांगना है। हाँ, अपने बच्चे से कहते हैं जाओ मुझे कोई चीज पकड़ा दो, तो ये भी तो मदद मांगना है। तो क्या ये शिर्क हो गया? नहीं, ये शिर्क नहीं है। आप जिंदों से कोई चीज कह सकते हैं जो आपके सामने, आप उसे कह सकते हैं भी ये करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए कोई बात कही, ये करके आओ, ये ऐसा करो, तो ये मतलब नहीं है। बल्कि मतलब ये कि गैबी किसी को ताकत समझना, कि हजरत अली दुनिया से जा चुके हैं लेकिन वो हमारी मदद करने पे कादिर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं लेकिन वो भी हमारे कोई काम करेंगे, अब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया से चले गए हैं लेकिन वो भी हमारी कश्ती पार लगाएंगे, वो भी हमारा कुछ बिगड़ी बना सकेंगे, ये सारी फिर शिर्क की बातें हो जाती हैं। यानी आपने अल्लाह ताला के साथ उनको शरीक कर दिया कि ये भी कोई ताकत रखते हैं, ये भी कोई ताकत रखते हैं ऐसे काम करने की कि ये दुनिया में नहीं भी है तब भी हमारी सुन रहे हैं, और तब भी इनके अंदर, खुद के अंदर ताकत है हमारी मुश्किलों को हल करने की। तो शिर्क की हर फॉर्म से बचना है, हर तरह की शिर्क से अपने आप को दूर रखना, और उम्मीदें अल्लाह ताला से ही रखनी है, तवक्कल अल्लाह पे ही करना है, भरोसा हमारा हमारे रब पे ही होना चाहिए। और शैतान आके इसी तरह इंसानों को, उसको पता है कि जो मुसलमान है वो किसी पत्थर के बुत के आगे तो नहीं झुकेगा, इससे तो वो मायूस हो चुका है, लेकिन आप उसको और तरह के शिर्क में वो मुब्तला करता है। तो हर तरह के शिर्क से अपने आप को बचा के रखना है, हत्ता के शिर्क खफी से भी, कि छुपा हुआ शिर्क जो रियाकारी है उससे भी अपने आप को बचा के रखें कि मेरा जो नेक अमल है वो मेरे रब की खातिर है, सिर्फ किसी और के लिए नहीं। उस स्पेशल गिफ्ट में उसके लिए अपना हदिया पेश करती हूँ मैं, अपनी कोई काम, कोई इबादत, कोई जैसे भी टूटी फूटी है, मैं अल्लाह के लिए पेश करती हूँ। इसके अंदर ना किसी को शरीक करें। औरत तो बर्दाश्त नहीं करती कि वो अपने खामिद को किसी के साथ शेयर करे और अल्लाह ताला के साथ पार्टनर बनाते। इन्नी लकुम मिन्हु नदीरुम व बशीर, और बेशक मैं तुम्हारी तरफ खबरदार करने वाला और बशारत देने वाला बना के भेजा गया हूं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए कि वही की गई कि आपको अल्लाह ताला नजीर और बशीर बना रहा है। नजीर और बशीर बना के अल्लाह ताला ने आपको भेजा है। इन्ना अरसलना का बशीर व नजीर। तो बाज जगह पे आप देखेंगे बशीर पहले और नजीर बाद में, बाज जगह पे नजीर पहले। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है ना, ये आपका रोल बताया जा रहा है कि आपका क्या रोल है, आपने क्या रोल अदा करना है दुनिया में रिसालत मिलने के बाद। तो शुरुआत जो आपकी जो दावत की थी ना, वो नज़ीर से थी, यानी खबरदार करने से। आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा पहाड़ पर चढ़ गए थे और फिर लोगों को बुलाया था और फरमाया था, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जबले अबी कुबैस के पीछे कोई लश्कर छुपा हुआ तो मेरी बात मान लोगे? वो कहने लगे हम मान लेंगे। और बुलाया कैसे था, या सबाहा कह के, और या सबाहा तब कहा जाता था जब कोई खतरे की बात होती। तो यानी इंतजार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की अपनी तबलीग। तो ये नज़ीर और बशीर असल में क्या है? नज़ीर क्या है? नज़ीर है वॉर्न करना कि देखो अगर तुम अल्लाह की इबादत से इनकार करते हो तो ये बुरा अंजाम है जो आगे। और बशीर क्या है? इसी बशारत देना कि अगर तुम अल्लाह के बंदे बन के चलते हो तो देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कितने इनामात रखे। फिर आप देखें जो वही भी आई थी, जो बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए जो वही आई, तो गालबन दूसरी वही थी, या अय्युहल मुद्दतिर खुम फअंदिर, ए कमली ओढ़ के लेटने वाले उठ और इंतजार कर। ये नहीं फरमाया तबशीर कर, लोगों को बशारते देना शुरू कर दे, क्योंकि देखें जैसे लोग और जो उनके हालात और जो माहौल होगा उसी के मुताबिक होगा ना। अब ऐसे तो हालात नहीं थे कि जिसके अंदर वो बशारते देते, बल्कि इस वक्त जरूरत थी कि तुम किधर जा रहे हो, किस रास्ते पे चल रहे हो, ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। और याद रखें जब आप लोगों को, जो बिगड़े लोग हैं उनको जब तक इंतजार नहीं करेंगे ना, तो तबशीर से फायदा नहीं होगा। वैसे लोग कहते नहीं नहीं अच्छी अच्छी बातें करें वरना वो कहीं डर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब देखिए जो तबशीर होती है ना वो इंसान के अंदर चेंज लेकर आती है। जैसे मसलन है, आप कहीं बैठे में आपको कोई कह दे जी बाहर बड़ा ही खूबसूरत सीन है, आके देखे, हो सकता है आप जाए या नहीं जाए, और बड़ी ही खूबसूरती है, बड़ा ही है, आप हो सकता है ना जाए, मैं बड़ी मसरूफ हूँ। लेकिन आपको अगर कोई कह दे अल्लाह माफ करे कि इस कमरे में सांप है, तो कितना मर्जी आपका काम होगा, आप उठ के चीखे मारते हुए दौड़ेंगे। तो ये जो खौफे खुदा लोगों में पैदा करना है ना, कि अल्लाह को जवाब देना है, ये लोगों तुम समझते हो कि एक दिन तुम्हें अल्लाह के आगे खड़े होना है, ये चीज इंसान को बदलती है। सिर्फ मीठी मीठी बातें कर देना जन्नत मिलेगी ये मिलेगा, इससे ठीक है एक शौक तो पैदा होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज अक्सर नहीं आता। ठीक है, आप देखें वो लड़की जिसने अपनी माँ से कहा था कि दूध में पानी ना मिला, तो माँ ने क्या कहा था? हजरत उमर जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, एक घर के बाहर गश्त करते हुए, घर के बाहर खड़े हुए और अंदर से आवाजें ये आ रही हैं कि अम्मा दूध में पानी ना मिला, तो माँ कहती है कि नहीं, माँ ने उसकी बात को नहीं तवज्जो दिया। कहने लगी आपको पता है कि अमीरुल मोमिनीन का कोड़ा बड़ा सख्त है, यानी अमीरुल मोमिनीन ने मना किया, माँ कहने लगी वो कौन सा देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। कहने लगी अल्लाह तो देख रहा है। यानी ये होता है ना खौफे खुदा कि जब इंसान के अंदर आ जाता है तब वो एकदम बात करते हुए कोई एक्शन करते हुए कुछ कुछ भी जो अमल है ना जो बुराई का है वो करते हुए एकदम रुक क्यों जाता है, इसलिए कि खौफे खुदा आता है, इसलिए नहीं कि जन्नत मिलती है। अक्सर ऐसा आप अपने आप पे भी रख के देख लें, अक्सर ये नहीं ख्याल आता कि हाँ अच्छा ये करूंगी तो जन्नत मिल जाएगी, अक्सर एकदम डर आता है कि हे अल्लाह के आगे जवाब देना होगा अगर मैं ये करूंगी तो क्या होगा, ऐसा ही है ना। हाँ देखिए ये खौफ खुदा की बरकत थी कि वो लड़की जो थी इसका रिश्ता फिर हजरत उमर ने अपने बेटे के साथ किया और इस लड़की की औलाद से उलमा कहते हैं कि 70 नेक आदमी पैदा हुए थे जिन्होंने अपनी अपने इलाकों में तब्दीली लेकर आए और वहां पे लोगों को मुतासिर किया, और इन्हीं में फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनको उमरे सानी भी कहते हैं वो इन्हीं की औलाद से हुए थे। तो सुबहान अल्लाह, फिर खौफे खुदा जब होता है ना तो आगे देखे औलादों में भी कैसे चलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या बना के भेजा, नजीर और बशीर। हालांकि आपकी फिर दावत के अंदर आप देखें गालिब गालिब जो है ना पहलू वो बशारत का है लेकिन स्टार्ट नजीर से हुआ है। वह अनिस्तगफिरु रब्बकुम, और ये मैं तुम्हारे लिए ये कहने के लिए आया हूँ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नजीर और बशीर बना के अंजार करने वाला और बशारत देने वाला हूँ मैं अल्लाह की तरफ से, और मैं ये तुम्हें कहने के लिए आया हूँ कि तुम अपने रब से इस्तेगफार करो। इस्तेगफार का मतलब क्या होता है कि बख्शिश मांगो अपने अल्लाह से, और ये सिर्फ रब्बे गफिर ली अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहां करना नहीं है, बल्कि वाकई इंसान निदामत इसके दिल के अंदर निदामत का एक पहलू हो कि इंसान ये सोचे कि मैंने जो अमल किया है ये सही नहीं, मैंने ये बुरा कर दिया। अगर निदामत नहीं है ना तो फिर कोई तौबा भी नहीं है। अब यहाँ पे अस्तग़फिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू भी है, सुम्मा तूबू इलैही, तो दो अलग अलग चीजें आई हैं। यानी अल्लाह ताला के आगे इस्तिगफार भी करो दिल से करो और तूबू भी है उसकी तरफ पलट भी जाओ, ये नहीं कि वो ही जिंदगी गुजारते जाओ फिर अल्लाह की तरफ पलटो। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ पलटना जरूरी है, अपना वो ट्रैक छोड़ना जरूरी है जिस पर चल रहे थे। देखिए उलमा कहते हैं कि सबसे ज्यादा कुरान की जो उम्मीद दिलाने वाली आयत है ना वो कौन सी है, आप बताएं जिन्होंने दो दो कोर्सेज कर लिए हैं वो बताएं, सबसे ज्यादा कुरान पाक की उम्मीद दिलाने वाली आयत जिसमें होप है वो है 24वें पारे में सूरह जुमर में, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله، يعني اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ ہے یعنی جب انسان استغفار کرے اللہ کی طرف پلٹے تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، मैं अल्लाह के सामने झुकती हूँ, मैं अल्लाह के सामने अपना मामला रखती हूँ जो बड़ा ही गफूर रहीम है। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, बेशक वो सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देने वाला है। तो इसलिए इस्तिग़फार करो, क्योंकि इस्तिग़फार करना जो है ना, यानी अब इंसान इस्तिग़फार करने का मतलब ये हो गया कि इंसान अब पिछली जिंदगी छोड़ के एक चेंज्ड लाइफ में आ गया, अल्लाह की फरमा बरदारी में आ गया, इंसान ने वो सारे तरीके छोड़ दिए जो पहले करता था, वो पलट आया, वो ढीठ होके वही काम नहीं करता चला जा रहा, वो गलत रास्ते कोई नहीं अपनाए हुए बल्कि वो पलट आता। और देखें जितनी जल्दी जिंदगी में इंसान अल्लाह की तरफ पलट आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी दूर निकल जाए ना गलत रास्ते पे मुड़ के आना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आप देख ले, आप कहीं भी रास्ता लें, अगर आप रास्ता भूल गए या रास्ता गलत आपने कहीं ले लिया, कोई एग्जिट गलत ले लिया, तो कितनी ही दूर चले जाएं, जितनी दूर जाते जाएंगे सीधे रास्ते से उतनी ही दूर होते जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये तौबा का दरवाजा खोला हुआ है, वैसे तो इंसान के मरने तक ये दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जितनी जल्दी वो पलट आएगा उतना ही उसके लिए आसान होगा पलटना, वरना जितनी देर करेगा वो उस रास्ते पे ही चलते चलते उसका ही आदी हो जाएगा, फिर पलटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जहां गलती हो ना, फौरन कोशिश किया करें, गलती हो गई है अच्छा चलो अब तो हो ही गई है, अब तो हो ही चुका है, तो अब यही करते रहते हैं, नहीं उसी वक्त कहें, चाहे 10 साल से कर रहे हैं वही काम, 20 साल हो गए हैं सारा वक्त से यही गलतियां करते जा रहे, कभी भी देर नहीं हुई, आज रियलाइज हो गया, आज माफी मांगे, माफी मांगने में देर ना किया कर। तो जब तुम पलट होगे ना अल्लाह की तरफ और तुम तौबा कर लोगे उसकी तरफ, युमत्तेअकुम मतान हसना, तो वो तुम्हें फायदा देगा, फायदा अच्छा। अब हम सोचते हैं कौन सा फायदा, कौन सा फायदा, दुनिया का या आखरत का? लेकिन यहां पे पता चलता है दुनिया का, इसलिए क्योंकि आगे क्या है, इला अजले मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक। आखरत का फायदा तो हमेशा का है, वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं। हाँ दुनिया का फायदा वो है जो अजल मुसम्मा होता है, जो एक वक्ते मुकर्रर तक है, उसके बाद इंसान खत्म हो जाता है। तो ये कौन सा फायदा है, यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला अच्छी उसको जिंदगी देगा, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको ऐसी लाइफ देगा जो पुरसकून होगी। आप देखते हैं जो अल्लाह ताला के हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी, जैसे हजरत इमाम तैमिया, इमाम गुजरे इमाम इब्ने तैमिया, जब उनको कैद कर दिया गया तो उन्होंने क्या फरमाया, कि उन्होंने कहा मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता, इसलिए कि मेरी जन्नत तो मेरे साथ है, अगर तुम मुझे, मेरा मेरे दुश्मन क्या कर सकते, अगर वो मुझे कैद में नहीं डालते, मुझे जिला वतन कर देते हैं, तो मैं अल्लाह की कायनात देखूंगा, सैर व सियाहत करूंगा, अल्लाह ताला की दुनिया में घूमूंगा, उसकी निशानियों को देखूंगा, अगर वो मुझे खत्म कर देते हैं तो भी क्या है, मेरे लिए शहादत है, अगर वो मुझे कैद में डालते हैं तो भी क्या है, मुझे तन्हाई मिलेगी और मैं अल्लाह से लो लगाऊंगा। तो यानी मोमिन का मामला हर जगह ही बड़ा जबरदस्त है। तो उसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पिछले गुनाहों की इस्तगफार कर लो, आइंदा के लिए अजम कर लो कि मैंने नहीं करना, गलत नहीं करना। तो बाज लोग सोचते हैं हमें सिर्फ आखरत में कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं, यहां से पता चला दुनिया में भी अल्लाह अच्छी जिंदगी देगा। ठीक है, लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह ताला ने फरमाया हम उनको जरूर पाकीजा जिंदगी देंगे। तो आखरत में तो मिलेगा ही अच्छा, आखरत में तो उसके लिए बहुत भलाइयां हैं ही, लेकिन यहां पे मुराद है दुनिया की जिंदगी। अल्लाह तुम्हें आफतों से बचा के रखेगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें एक पुरसकून जिंदगी देगा और एक वक्ते मुकर्रर तक लाइफ देगा, यानी कोई अजाब आके इंसान को नहीं खत्म किया जाएगा, जब वो इस्तगफार कर लेता है अजाबों से बच जाता है। तो मताए हसन, हर एक इंसान चाहता है कि ये इस दुनिया की जिंदगी भी मेरी अच्छी हो जाए, लेकिन ये तभी मिल सकती है जब वो इस्तगफार करके अल्लाह की तरफ तौबा करता है। हम क्या सोचते हैं कि हाँ अगर हम तौबा करके अपनी जिंदगी बदल के अल्लाह की तरफ आ गए तो हमारी यहाँ की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम कैसे जिएंगे, हम कहते हैं ना कि यहाँ भी तो रहना है ना, तो ये गलत कर लो, वो गलत कर लो, वो गुनाह कर लो, क्योंकि आखिर जीना है ना यहाँ पे। हालांकि बिल्कुल आयत में उलट कहा जा रहा है, आप खुद देख लें आपके सामने आयत, या ये कहा जा रहा है कि हाँ आपने दुनिया में तो जीना ही है, क्या करें मजबूरियां हैं, तो इसलिए सारे गलत काम करते जाओ, जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह से लोग आपको चाह रहे हैं कि आप चलें, वैसे चलते जाओ। नहीं, आपको अगर मतान हसना चाहिए ना, अच्छी जिंदगी चाहिए, इस जिंदगी में भी भलाई चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इस्तिगफार करनी पड़ेगी, फिर तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह की तरफ पलटना पड़ेगा। तो अब अल्लाह ताला दुनियावी नेमतें भी देता है, आखरत में तो है ही, दुनिया की नेमतें भी मिलती हैं। जैसे हजरत हसन बसरी के पास एक आदमी आया था, उसने शिकायत की कि मेरे खेत जो है वो सूख गए हैं, फरमाया इस्तिगफार करो। दूसरा आया, उसने कहा मेरी औलाद नहीं है, फरमाया इस्तिगफार करो। तीसरा कोई आया, उसने भी कोई अपनी रिस्क की तंगी की शिकायत करी, फरमाया इस्तिगफार करो। तो लोगों ने पूछा, आप हर एक को इस्तिगफार का ही कहते जा रहे हैं, तो किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है? तो फरमाया तुम कुरान पढ़ो, उसमें ये आयात है इस्तिगफार के लिए। सूरह नूह में आप देखिए 11, 12, 13 आयात क्या है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान से भी बारिश बरसाएगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, मालों से भी, बेटों से भी, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें भी अता फरमाएगा। तो ये दुनिया की जिंदगी की चीजें हैं ना, तो इसका मतलब दुनिया में भी इंसान को सहूलतें मिलेंगी, रिस्क की वसत मिलेगी, ये सब मिलता है इस्तिगफार करने से। अब ये ना हो कि आप इस्तिगफार की तस्बीहां शुरू कर दें, या आप आयत करीमा शुरू कर दें, वो भी तो इस्तिगफार ही है ना। तो वो आयत करीमा को 1,25,000 शुरू कर दें, इससे मसले हल होंगे। मसले हल होते हैं इस्तिगफार से ही होते हैं, और यहाँ पे यही कहा जा रहा है। लेकिन वो वाली इस्तिगफार नहीं जो आपकी गुठलियां लेके बैठ गए और दुनिया को इन्वाइट कर लिया, अब आप खाने पीने बनाने शुरू कर दें और लोग बैठे आयत करीमा पढ़ते जाए, ये किस किस्म की इस्तिगफार है? ये किस तरह की इस्तिगफार है कि वो अपने लिए इस्तिगफार, उनको भी मसला ये है कि बस अब इसने बुला लिया, अब हम भी जल्दी जल्दी खत्म हो और हमारी जान छूटे, ये कैसी इस्तिगफार हो रही? कि किस तरह की निदामत है? जब तक निदामत नहीं है तब तक इस्तिगफार भी नहीं है, जब तक आपको शर्म नहीं है इसमें कि मैंने क्या किया। और फिर अल्लाह ताला और क्या देगा? युती कुल्लदी फदलिन फतलहू, और अल्लाह ताला देगा हर फजल वाले को उसका फजल। यानी फजल से मुराद क्या होता है? एक्स्ट्रा। एक होता है ना कि आपकी उजरत होती है, एक जिसको आप टिप कहते हैं दुनिया में, या बोनस कहते हैं दुनिया में, वो फजल होता है, अपना फजल अता करेगा, और ये उससे जायद है। जैसे हमें पहले हमने वह ज्यादा का भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएगा जन्नत वालों को, ये उसका फजल है। अल्लाह ताला जो इंसान करेगा उससे एक्स्ट्रा देगा, और वो कैसे? कि जैसे कोई इंसान भी नेकी करता है तो क्या उसको एक ही उसका अजर मिलता है? नहीं, 10 गुना करके उसको अजर दिया जाता है, ये अल्लाह का फजल है। और बुराई का वो भी क्या 10 गुना की जाती है? नहीं, वो एक ही लिखी जाती है। इसलिए ये अल्लाह ताला फिर हर फजल वाले को अपना फजल देगा, और उसका फजल देगा ये भी हो सकता है, अल्लाह की तरफ भी जा सकता है, फजलहू अल्लाह का फजल, और उसका फजल यानी जितना वो उसका मेरिट था, जितना वो डिजर्व करता था, उससे ज्यादा अल्लाह ताला फजल उसको देगा, उसका उस अमल का। वह इन, और अगर तवल्लो तुम मुंह फेरोगे, फइन्नी अखाफ अलैकुम अदाब यौमिन कबीर। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहलवाया जा रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ नजीर बशीर बना के भेजाऊंगी, आऊं लोगों तुम तौबा इस्तगफार करो, लोगों तुम्हें अल्लाह ताला इस दुनिया में भी भलाई जिंदगी देगा, अगर तुम इस्तगफार करोगे अल्लाह ताला अपने फजल से तुम्हें और भी नवाजेगा, और अगर तुम नहीं फिर भी मानते, टर्न अवे करते हो, तो मुझे डर लगता है तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से। बड़ा दिन कौन सा है? यौम इन कबीर इन, यौम कबीर भी हमें एक और नाम पता चला कयामत के दिन का, ठीक है? कयामत के दिन के बहुत सारे नाम है, यौमुल हसरा है, यौम तगाबुन है, यौमुल कियामा है, यौम कबीर भी है, यानी बड़ा दिन। किस लिहाज से बड़ा है? इसलिए कि भारी है वो और लंबा भी है वो। तो जैसे हम कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात है ये, तो मतलब क्या होता है, मतलब ये नहीं कि लेंथ में या विड्थ में कोई बड़ी है, तो बहुत अजीम दिन है वो। अल्लाह अकबर। तो अगर तुम नहीं फिर भी इस्तेफार की तरफ आते, ना तुम डरते हो, ना तुम्हारे अंदर कोई खौफे खुदा है, ना तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होने की कोई फिक्र है, तो मैं तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से डरता हूं कि उस दिन तुम्हें अजाब ना खींच ले, तुम ना नुकसान ना कर बैठो। क्योंकि इस्तेगफार करना, याद रखें, हमारी चॉइस नहीं है, हमारी जरूरत है। चॉइस नहीं है, समझ आ रही बात आपको? चॉइस तो ऐसे भी ठीक है, आप करें नहीं करें, करेंगे तो भला है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। चॉइस नहीं है, ये जरूरत है, इसके बगैर चारा नहीं है। इसलिए कि जो इंसान चाहता है कि कयामत के दिन अपने आमाल नामे को देख के वो खुश हो, ये हदीस में आता है, जो चाहता है ना कि इसका उसका आमाल नामा उसको खुश कर दे, उसको चाहिए कि कसरत से तौबा इस्तगफार करे, कसरत से तौबा करें, दिन में उठते बैठते तौबा करते रहे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। चले आपको नहीं, कोई लफ्ज भी नहीं ना आता, कोई मसला नहीं, आपके अंदर बस ये अगर होता रहता है ना, हर एक कसक रहती है आपके अंदर कि अल्लाह मैं नहीं उस तरह से कर सकी जैसे तेरा हक है, अल्लाह मैं नहीं तुझे राजी कर सकी जैसे राजी करना चाहिए था, अल्लाह मुझसे वैसे नहीं हो पा रहा जैसे होना चाहिए, अल्लाह मुझसे कितनी कमियां हो रही हैं, अल्लाह मुझसे कितने गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह मेरी कितनी खताएं हैं, इनके साथ मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगी। जब जब बैठे, जब उठे, जब लेटे, ये ख्याल दिल में आए और फौरन इंसान तौबा करने लगे, यही मतलूब है कि इंसान से। और ये मतलब इसका हरगिज नहीं है कि आप बस एक तस्बीह में जी सुबह को इस्तगफार की कर लेती हूँ, एक तस्बीह सुबहान अल्लाह की कर लेती हूँ, एक तस्बीह अल्हम्, ठीक है आप बड़े बड़ी अच्छी बात है आप तस्बीह करती हैं इस्तगफार की, लेकिन इस्तगफार में अगर वो बात ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं है, आपके दिल में ये रिमोर्स ही नहीं है, ये निदामत नहीं है, पछतावा नहीं है, या आप फील ही नहीं करते, फीलिंग है ही नहीं है कोई उसमें, कोई इसमें जज्बा नहीं है, तो वो कौन सी इस्तगफार है? अगर ये आप महसूस नहीं कर पा रहे कि मैं नहीं करती वो, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर भी रही हूं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा, तब वो जो आंसू आएंगे और तब वो जो आपके दिल से इस्तगफार निकलेगी ना, वो है जो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल, वो है कि तब दुनिया का भी अच्छा फायदा और अल्लाह ताला और भी अपने फजल से अता फरमाएगा। ठीक है, तो इसको एक फॉर्मूला समझ के या एक टाइम टेबल पहाड़ा समझ के याद ना करें, कि आपका दिल इसके अंदर, ये दिल में ये कसक हो, ये दिल हार्ट शुड बी एकिंग, दर्द हो इसके अंदर, क्यों नहीं मुझसे होता और नहीं हो पा रहा, और गुनाह है कि वो बढ़ते ही जा रहे, इस गठरी को मैं कैसे उठाऊंगी। ये जिस दिन आया ना अंदर, तब फिर ये है कि ये तौबा है, ये फिर पलटाती भी है, वरना सिर्फ मुंह की बातें हैं, जुबान की हरकत है और कुछ भी नहीं। तो इस एहसास के लिए बार बार अल्लाह ताला की तरफ ध्यान जाना चाहिए और बार बार इस चीज का एहसास रहना चाहिए। दिन भर में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा तौबा करते हैं, और हर मजलिसों में साहबा फरमाते थे हम आपसे इतनी इतनी दफा गिन लेते थे कि इतनी दफा कर रहे हैं, तो हमारी तो दिन में कितनी दफा होनी चाहिए, 100 ना सही, कुछ 10 दफा ही सोचे कि हम इस तरह से हम अपने दिल में एहसास लेके आए। लेकिन ये उसी के लिए होगा जिसका सोच और ताना बाना वहां आखरत के साथ जुड़ा होगा, कि जो ही वो बैठेगा या जो ही वो तन्हा किसी वक्त भी होगा, उसकी सोच वहीं चली जाती होगी, वरना कैसे इस्तेफार होगी। इलल्लाही मर्जिउकुम, सुन लो लोगो, तुम मुंह फेर लो, अल्लाह ताला को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्या करोगे बताओ? तुम्हें तो एक दिन लौटना उसकी तरफ ही है, जाओगे कहाँ? फिरू इल्लाह, तो अल्लाह की तरफ भाग के आ जाओ ना। अभी दुनिया में हमारे पास खुद चॉइस है कि हम अल्लाह की तरफ आए या नहीं आए। अल्लाह ने चॉइस खुद दी हुई है, इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा। तुम चाहे शुक्रगुजार बनो चाहे ना शुक्र बन जाओ, अल्लाह ने चॉइस दी है तुम्हें, चाहे फरमा बरदारी करो चाहे ना फरमान बन जाओ। अल्लाह ताला ने तुम्हें खुली छुट्टी दी है यहाँ पे, लेकिन याद रखो ये खुली छुट्टी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन वापस जाना है कहाँ, जहां से आए हैं। मौत का तो हर एक को यकीन है, काफिर भी कहता है मरना, जाहिर अपने सामने देखते हैं लोगों मरते हुए, वो भी कहता है मरना, दहरिया भी कहता है मरना है, सब कहते हैं। लेकिन जिस चीज में उनको ईमान नहीं है और हमारा है, वो ये है इलाल्लाह ही मर्जियुकुम। देखें, मर्जियुकुम इलाल्लाह भी ठीक जुमला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलाल्लाह ही मर्जियुकुम। जब इलाल्लाह आया ना, अल्लाह ही की तरफ लौटना है तुम्हारा, ये माना फिर बन जाता है। मर्जियुकुम इलाल्लाह का मतलब अल्लाह की तरफ तुम्हें जाना। अब जब सिर्फ अल्लाह की तरफ पलटना है और कहीं नहीं जाना, ये नहीं कि क्रिश्चियन कहीं और चले जाए, यहूदी कहीं और चले जाए, एथीस्ट कहीं चला जाए, मुसलमान अल्लाह की तरफ जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं है। सबको तुम्हें उस अल्लाह ही की तरफ पलटना है, एक ही है जगह जहां पे सबको पहुंचना। तो फिर तुम्हारे पास चॉइस क्या है? फिर कहां भागे जाते हो? फिर कहां मुड़ मुड़ के फिरते हो? फिर अल्लाह से किधर फरार हासिल कर सकते हो? वापस तो उसके पास ही जाना। वाला कुल्ली शैइन कदीर। कोई ये ना समझे ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता, कहाँ कौन जो मरेगा, कहाँ मरने वाले, किधर किधर चले गए, कब कब मर गए, कौन पहुंचेगा, सारी बातें हैं, कौन जिंदा करता फिरेगा। नहीं, वाला कुल्ली शैइन कदीर, वो तो हर चीज पर कादिर, तुम्हें भी पलटा के ले आएगा अपने सामने। देखिए, ये नमाज हमें हर रोज याद दिलाती है इसी बात की के जैसे आज हाथ बांधे यहाँ पे खड़े हैं ना, इसी तरह एक दिन हशर के मैदान में खड़े होंगे, इसी तरह अल्लाह सामने होगा। एक तरफ गुनाह होंगे, एक तरफ नेकियां होंगी, एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगी, और इंसान खड़ा होगा। फिर की तरफ फरार करोगे? अभी तो भाग जाते ना, अभी तो कहते हो नहीं सुनना, नहीं मानना, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समझते हो कि आजाद हो, मेरे पास चॉइस है, नहीं मानूंगी को क्या फर्क पड़ेगा, कौन मुझे पूछ सकता है, कुछ नहीं होता, सब करते हैं। उस दिन क्या करोगे जब अल्लाह के आगे खड़े होगे, सामने अल्लाह और इधर आप, फिर क्या करोगे?